मुख्य समाचारों में रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को निरंतर में लाने की कोशिश, दरों में वृद्धि, सिटकॉम स्टार क्रिस्टी एली का 71 वर्ष की आयु में निधन और न्यूजीलैंड ने ट्रांस एथलीट्स को प्रतियोगिताओं में शामिल करने का रास्ता किया साफ। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। रिजर्व बैंक ने क्रिसमस से पहले वर्ष के अपने अंतिम वित्तीय निर्णय में ऑस्ट्रेलिया की नकद दर में 25 आधार अंक की वृद्धि की है। इसका अर्थ है कि आधिकारिक दर अब 3.10% है, 10 वर्षों में उच्चतम स्तर और लगातार 8वीं सीधी दर वृद्धि। रिजर्व बैंक के गवर्नर फिलिप लोब का कहना है कि बैंक का निर्णय मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के उनके प्रयासों से संबंधित है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आते शुक्रवार को वर्चुअल राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक से पहले अपने राज्य और क्षेत्र के समकक्षों को कोयले की कीमतों पर कैप के प्रस्ताव के बारे में विवरण नहीं दिया है। न्यू साउथ वेल्स के कोषाध्यक्ष मैट कीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके विचार के लिए बिजली की कीमतों में कमी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन किरीबिली हाउस में आइसोलेशन पर रहते हुए श्री एल्बनीसी ने एबीसी के साथ इंटरव्यू में कहा है कि ये सच नहीं है। उनका कहना है कि टीमें हफ्तों से देश के ऊर्जा संकट की योजना पर काम कर रही हैं, जिसके बारे में सभी को पूरी जानकारी है।
You've got to draw a distinction between what premiers and some states say in public in order to promote their own position and what is actually happening, and what's been happening is very constructive dialogue.
इस बीच फेडरल सरकार का कहना है कि अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसकी उच्च स्तरीय वार्ता ऑकस गठबंधन सौदे के तहत परमाणु संचालित पनडुब्बियों को खरीदने के निर्णय में मदद करेगी। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स वर्तमान में अपने अमरीकी समकक्षों के साथ वार्षिक ऑस्मिन वार्ता के लिए वाशिंगटन में हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक कर रहे हैं और एक जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोर्ड शिपयार्ड का दौरा कर रहे हैं जहां परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया जाता है। श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय गठबंधन के तहत यूएस या यूके परमाणु पनडुब्बी डिजाइन के लिए साइन अप करेगा या नहीं, इस पर उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा। फेडरल सरकार का कहना है कि उसे उम्मीद है कि स्वदेशी प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए घोषित एक नई फंडिंग पहल प्रथम राष्ट्र के लोगों के लिए अंतर को कम करने में मदद करेगी। नई $334 मिलियन की फंडिंग में प्ले ग्रुप्स, मुफ्त लंच कार्यक्रम और फर्स्ट नेशन के उन युवा छात्रों के लिए गहन समर्थन शामिल होगा जिन्हें स्कूल छोड़ने का जोखिम है। स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई मंत्री निंदा बर्नी ने एसबीएस न्यूज को बताया कि शैक्षिक स्थानों में स्वदेशी बच्चों को विशेष रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है।
Well, it goes without saying that when it comes to educational outcomes, Aboriginal and Torres Strait Islander children and young people are way behind the eight ball. This is a commitment of $334 million right across the country. To make sure that First Nations children have a strong foundation in education, because that does lead to better outcomes in life.
मोंटीनेग्रो ने पुष्टि की है कि ये नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन का समर्थन करेगा। मोंटीनेग्रो कीव की आकांक्षाओं का आधिकारिक रूप से समर्थन करने वाला तीसरा सदस्य है। बेल्जियम और चेक गणराज्य पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे यूक्रेन द्वारा इस गुट में शामिल होने के पक्ष में हैं। और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो इस समर्थन के लिए आभारी हैं। अमरीका और दक्षिण कोरिया के सीमा पार चल रहे अभ्यास के जवाब में उत्तर कोरिया ने सैन्य इकाइयों को समुद्र में और गोले दागने का आदेश दिया है। ये गोलाबारी उत्तर कोरिया द्वारा ये कहे जाने के एक दिन बाद हुई है कि उसने अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से समुद्र में 130 से अधिक गोले दागे, जिनमें से कुछ दोनों कोरिया के बीच समुद्री सीमा के पास एक बफर जोन में गिरे। सियोल ने इसे तनाव कम करने के लिए किया गया 2018 के अंतर कोरियाई समझौते का उल्लंघन बताया है, लेकिन प्योंगयांग का कहना है कि उसके पड़ोसी देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तेजक है और उनकी शत्रुतापूर्ण नीतियों का सबूत है। एक पश्चिमी सिडनी स्थित कोरियर कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों का परीक्षण शुरू किया है। सरकार देश के भूमि परिवहन उद्योग में डीकार्बोनाइजेशन की रणनीति अपना रही है। बंगरीबी में ग्लोबल एक्सप्रेस ने फेडरल सरकार की ऑस्ट्रेलियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी से 20 मिलियन डॉलर अनुदान की मदद से 60 बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। बेड़े के कम एक तिहाई को इलेक्ट्रिक बनाने की भविष्य की योजना में ये पहला कदम है। चूंकि वर्तमान में भारी वाहन सड़क परिवहन उत्सर्जन के 22% के लिए जिम्मेदार हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा है कि उनका मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपनी परफॉर्मेंस को तेजी से ऊपर उठाने की आवश्यकता है।
We're coming from way behind the pack. There are many things that Australia leads on. Electric vehicles are one area where Australia is way, way, way behind. And we've got a lot of catching up to do very fast. We don't have a second to waste.
Sitcom aur film actress Kirsty Alley ka nidhan ho gaya hai. Wo 71 varsh ki thi. उनके बच्चों विलियम टू और लिली प्राइस ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए पोस्ट किया है कि स्टार की मृत्यु हाल ही में पता चले कैंसर से हुई। अपने बयान में उन्होंने कर्स्टी एले को एक अविश्वसनीय और प्यार करने वाली मां के रूप में वर्णित किया है। मृत्यु के समय उनका परिवार उनके साथ था। एले 1980 के दशक में चीयर्स में अपनी अभिनीत भूमिका के साथ एक घरेलू नाम बन गई थीं। इसके लिए उन्हें 1991 में एमी और गोल्डन ग्लोब भी मिला था। उन्हें डेविड्स मदर और लुक हु स्टॉकिंग में उनकी फिल्मी भूमिकाओं के लिए भी जाना गया। और भारत के समाचारों में एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समूचे राष्ट्र के लिए है, ये दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। सोमवार को हुई इस बैठक में श्री मोदी ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सभी से सहयोग मांगा। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के विभिन्न हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी, जिससे देश के अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्टता सामने आएगी। साल भर के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में आगंतुकों के भारत आने की संभावना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने और उन स्थानों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया जहां G20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। भारत की G20 प्राथमिकताओं के पहलुओं को विस्तार से बताते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वाईएसआर कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू और द्रुमक के एमके स्टालिन सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी इस बैठक में संबोधित किया। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमरीका के 67 सेंट और भारत के 55.35 रूपये के बराबर है। खेल समाचारों में न्यूजीलैंड के अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसजेंडर एथलीट्स सामुदायिक खेल में भाग ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने पहचाने गए लिंग को साबित करने या इसे सही ठहराने की आवश्यकता नहीं होगी। स्पोर्ट्स न्यूजीलैंड का कहना है कि ये आवश्यक है कि सामुदायिक खेल के लीडर्स समावेश के लिए प्रतिबद्ध रहें। लेकिन आज यानी मंगलवार 6 दिसंबर को जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत कुलीन खेलों पर लागू नहीं होते हैं। द गवर्निंग बॉडी का कहना है कि ट्रांसजेंडर कहां और कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं ये परिभाषित करने के लिए उन स्तरों पर अलग अलग कोड होंगे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बुधवार को पर्थ में तूफान की संभावना। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। होबार्ट में बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। सिडनी में भी मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारों सहित तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।